नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइकल शेलेनबर्गर की 2020 में प्रकाशित पुस्तक अपोकैलिप्स नेवर पर्यावरण जलवायु नीति और ऊर्जा पर लिखी गई एक विवादास्पद गैर कथाकृति है। इसका केंद्रीय तर्क यह है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसे सभ्यता के आसन्न अंत के रूप में पेश करना वैज्ञानिक चर्चा और सार्वजनिक नीति दोनों को विकृत कर सकता है। शेलेनबर्गर पर्यावरण आंदोलन के कुछ प्रभावशाली संदेशों, मीडिया प्रस्तुतियों और नीति प्राथमिकताओं की आलोचना करते हैं। वे विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा की विश्वसनीय उपलब्धता, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के पक्ष में तर्क देते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पर्यावरणीय जोखिमों को नकारना नहीं, बल्कि उनके पैमाने, अनिश्चितताओं और संभावित समाधानों पर कम भयभीत, अधिक मानवीय बहस प्रस्तावित करना है। फिर भी यह सर्वसम्मत वैज्ञानिक विवरण नहीं है। कई वैज्ञानिक समीक्षकों ने इसके आंकड़ों की व्याख्या, विकास संबंधी आशावाद और परमाणु ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता को चुनौती दी है। इसलिए इसे पर्यावरणीय बहस में एक हस्तक्षेप और आलोचनात्मक प्रतितर्क दोनों रूपों में पढ़ना उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जलवायु जोखिम को स्वीकारते हुए प्रलयकारी भाषा पर आपत्ति। पुस्तक का सबसे स्पष्ट और जानबूझकर उकसाने वाला दावा यह है कि जलवायु परिवर्तन को नकारना और उसे तत्काल वैश्विक प्रलय कहना दोनों ही सार्वजनिक समझ के लिए खराब विकल्प है। शेलेनबर्गर मानते हैं कि तापमान वृद्धि, चरम मौसम, समुद्र स्तर वृद्धि और पारिस्थितिक दबाव गंभीर विषय है, लेकिन उनका तर्क है कि लोकप्रिय संवाद अक्सर संभावित खतरों को निश्चित विनाश की तरह प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार ऐसी भाषा लोगों को जोखिमों की तुलना करने, अनुकूलन की क्षमता समझने और व्यावहारिक नीतियों का मूल्यांकन करने से रोक सकती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि समाजों की आय, संस्थाएं, बुनियादी ढांचा और तकनीक जलवायु प्रभावों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बदलते हैं। उदाहरण के लिए, बेहतर आवास, पूर्व चेतावनी प्रणालियां, स्वास्थ्य सेवाएं और जल प्रबंधन मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाली क्षति घटा सकते हैं। पुस्तक का उपयोगी प्रश्न यह है कि क्या भय पैदा करना कार्रवाई के लिए आवश्यक है या क्या इससे अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि लेखक कभी कभी वैज्ञानिक समुदाय और जलवायु चिंताओं की विविधता को एक ही अलार्मवादी खांचे में रख देते हैं। इसीलिए पुस्तक का आग्रह जोखिम को नकारने के बजाय दावों की भाषा, प्रमाण और अनुपात की जांच करने का निमंत्रण है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा को कम कार्बन व्यवस्था का केंद्रीय विकल्प मानना। शेलेनबर्गर की पर्यावरणीय राजनीति में परमाणु ऊर्जा केवल एक बिजली स्रोत नहीं बल्कि विश्वसनीय डिकार्बोनाइजेशन का परीक्षण है। वे तर्क देते हैं कि बिजली व्यवस्था को हर समय मांग के अनुरूप ऊर्जा चाहिए, जबकि सौर और पवन उत्पादन मौसम तथा समय पर निर्भर रहता है। इस अंतराल को भरने के लिए भंडारण, विस्तृत ग्रिड, अन्य उत्पादन स्रोत या जीवाश्म ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। लेखक के अनुसार परमाणु संयंत्र अपेक्षाकृत कम भूमि पर निरंतर बिजली दे सकते हैं और उनका कार्बन उत्सर्जन कम होता है। वे रेडियोधर्मी कचरे, दुर्घटनाओं और विकिरण से जुड़े भय को भी अनुपात के प्रश्न के रूप में देखते हैं। यह कहते हुए कि इन जोखिमों की तुलना कोयला प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन से होने वाले नुकसान से करनी चाहिए। पुस्तक पर्यावरणवादी समूहों के उस विरोध पर सवाल उठाती है जो परमाणु ऊर्जा को अस्वीकार करते हुए तेज उत्सर्जन कटौती चाहते हैं। यह तर्क बहस योग्य है क्योंकि परमाणु परियोजनाओं की लागत, निर्माण में देरी, नियामकीय जटिलता और स्थानीय सहमति वास्तविक बाधाएं हैं। आलोचक यह भी कहते हैं कि लेखक नवीकरणीय ऊर्जा, दक्षता और ग्रिड सुधारों की संभावनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं देते। फिर भी पुस्तक ऊर्जा बहस को केवल उत्पादन की कुल मात्रा से हटाकर विश्वसनीयता, भूमि उपयोग, सुरक्षा और प्रणालीगत लागतों तक ले जाती है। तीसरा, गरीबी, ऊर्जा पहुंच और विकास को पर्यावरणीय न्याय से जोड़ना। पुस्तक का मानवीय आधार यह विचार है कि गरीबी स्वयं एक बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम है। शेलेनबर्गर के अनुसार जिन समुदायों के पास विश्वसनीय बिजली, आधुनिक ईंधन, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और मजबूत संस्थाएं नहीं हैं, वे जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक खतरों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए वे पर्यावरण नीति को केवल उत्सर्जन घटाने की समस्या नहीं मानते बल्कि विकास की क्षमता से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि गरीब देशों को ऊर्जा गरीब बनाए रखना या उनके लिए ऐसी महंगी शर्तें तय करना जिन्हें समृद्ध देशों ने अपने औद्योगिक विकास के दौरान नहीं माना था, नैतिक रूप से संदिग्ध हो सकता है। वे ऊर्जा सघन विकास, कृषि उत्पादकता और बुनियादी ढांचे को मानव कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के संभावित सहायक बताते हैं। इस दृष्टि में बेहतर आय और तकनीक लोगों को लकड़ी या गोबर जैसे प्रदूषक ईंधनों पर निर्भरता से निकाल सकती है, भूमि पर दबाव घटा सकती है और आपदाओं के प्रति सुरक्षा बढ़ा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष कि आर्थिक वृद्धि लगभग अपने आप पर्यावरणीय समस्याएं हल कर देगी विवादित है। वृद्धि के लाभ असमान हो सकते हैं और संसाधन खपत या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत नियम जरूरी रहते हैं। पुस्तक की महत्वपूर्ण देन यह है कि वह जलवायु नीति के वितरणात्मक प्रभाव पूछती है, खासकर उन लोगों पर जिनकी प्राथमिक समस्या अभी भी ऊर्जा और विकास तक पहुंच है। चौथा, पर्यावरणीय संस्थाओं, मीडिया और वित्तीय प्रोत्साहनों की आलोचना। शिलेम्बर्गर पर्यावरणीय चेतावनियों की विषय वस्तु के साथ साथ उनके संचार और संस्थागत प्रोत्साहनों की भी जांच करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ गैर लाभकारी संगठन, मीडिया मंच और अभियानकर्ता भयावह संदेशों को इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे ध्यान, दान, राजनीतिक समर्थन और सामाजिक प्रभाव जुटाने में सक्षम होते हैं। इस तर्क का अर्थ यह नहीं कि हर वैज्ञानिक चेतावनी स्वार्थपूर्ण है, बल्कि पुस्तक पूछती है कि जटिल वैज्ञानिक निष्कर्ष जब शीर्षकों, फंडरेजिंग अपीलों और सामाजिक माध्यमों में पहुंचते हैं तो क्या अनिश्चितताएं और सीमाएं गायब हो जाती हैं। लेखक के अनुसार आपदा केंद्रित भाषा कभी कभी उन समाधानों को भी संदिग्ध बना देती है जिनमें औद्योगिक ढांचा, बड़े निवेश या नई तकनीक शामिल हो। वे इसे पर्यावरणवाद के भीतर सभ्यता, विकास और ऊर्जा के प्रति गहरे संदेह से जोड़ते हैं। इस हिस्से की शक्ति यह है कि यह विज्ञान और विज्ञान संचार के अंतर को पहचानने के लिए मजबूर करता है। इसकी कमजोरी यह हो सकती है कि संस्थागत आलोचना करते समय पुस्तक कई संगठनों और विचारों के बीच पर्याप्त भेद नहीं करती। पर्यावरण आंदोलन एक रूप नहीं है और अनेक समूह परमाणु ऊर्जा, न्यायपूर्ण संक्रमण या अनुकूलन पर अलग अलग दृष्टि रखते हैं। फिर भी पाठक के लिए उपयोगी सबक यह है कि किसी दावे की वैज्ञानिक स्थिति के साथ उसके प्रोत्साहन, प्रस्तुति और नीति परिणाम भी पूछे जाएं। अंत में मानववादी पर्यावरणवाद और तकनीकी अनुकूलन का प्रस्ताव अपोकैलिप्स नेवर का वैकल्पिक ढांचा मानववादी पर्यावरणवाद है। शिलेम्बर्गर का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य मानव समृद्धि और प्रकृति की रक्षा को एक दूसरे का विरोधी मानना नहीं होना चाहिए। वे तकनीकी नवाचार, ऊर्जा के अधिक सघन स्रोतों, आधुनिक कृषि और आर्थिक क्षमता को ऐसे साधन मानते हैं जिनसे कम भूमि और संसाधनों में अधिक मानवीय जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इस विचार में ऊर्जा घनत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमित भूमि पर अधिक ऊर्जा उत्पादन से प्राकृतिक क्षेत्रों पर दबाव घट सकता है। लेखक अनुकूलन को भी जलवायु नीति का आवश्यक भाग मानते हैं। बाढ़ सुरक्षा, बेहतर भवन, जल प्रबंधन, फसल सुधार और आपदा तैयारी जैसे उपाय जोखिम घटाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। पुस्तक का विरोध उस सोच से है जिसमें औद्योगिक समाज को मूलतः विनाशकारी मानकर उपभोग और विकास में व्यापक कमी को मुख्य समाधान माना जाता है। इसके बजाय वह बेहतर तकनीक और सक्षम संस्थाओं पर भरोसा रखती है। आलोचक इसे अत्यधिक तकनीकी आशावाद कह सकते हैं क्योंकि तकनीक के लाभ अपने आप न्यायपूर्ण ढंग से नहीं बढ़ते और नई प्रणालियां भी नए पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकती हैं। फिर भी पुस्तक एक जरूरी नीति प्रश्न उठाती है कि क्या पर्यावरणीय लक्ष्य उन समाधानों से जुड़े हैं जो बड़े पैमाने पर टिकाऊ, विश्वसनीय और गरीब आबादी के लिए सुलभ हो। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा नीति और पर्यावरणवाद पर प्रचलित सार्वजनिक भाषा से आगे जाकर तर्कों की जांच करना चाहते हैं। नीति निर्माण, पत्रकारिता, ऊर्जा क्षेत्र, विकास अध्ययन और पर्यावरणीय आंदोलनों में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें बहस के कई महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि यह ऊर्जा की विश्वसनीयता, भूमि उपयोग, गरीबी, अनुकूलन और तकनीकी क्षमता को एक ही चर्चा में रखने के लिए प्रेरित करती है। बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक भयावह भविष्यवाणियों को न तो तुरंत स्वीकारे, न ही तुरंत खारिज करे, बल्कि स्रोत, संभावना, समय सीमा और नीति विकल्पों की तुलना करे। समान विषय की अनेक पुस्तकों के विपरीत, अपोकैलिप्स नेवर पर्यावरणीय संकट की गंभीरता बढ़ाकर कार्रवाई मांगने के बजाय संकट की भाषा और आंदोलन की प्राथमिकताओं की आलोचना करती है। परमाणु ऊर्जा के लिए इसका सशक्त समर्थन और विकास को पर्यावरणीय न्याय का भाग मानना इसे विशिष्ट बनाता है। साथ ही इसे अंतिम वैज्ञानिक निर्णय मानकर पढ़ना उचित नहीं होगा। इसके अनेक निष्कर्षों, खासकर आर्थिक वृद्धि की सीमाओं और ऊर्जा विकल्पों के संतुलन पर विशेषज्ञों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। सबसे उपयोगी पठन पद्धति यह होगी कि इसे असहमत स्रोतों के साथ पढ़ा जाए। पुस्तक एक पक्षीय उत्तर नहीं, बल्कि यह समझने का साधन बनती है कि पर्यावरणीय नीति में तथ्य, मूल्य, भय, संस्थाएं और तकनीकी चुनाव कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल शिलेम्बर्गर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।